सत्संग सभी आप संतों के प्रवचनों का आनंद ले रहे थे, जहाँ इन्होंने अपनी बात कही और साथ साथ जितने भी हमारे गुरु पीर पैगंबर दुनिया में आए उनका भी नाम लिया, जो जो उन्होंने पारोपकार इस दुनिया में किए, जो सच की आवाज़ लेकर जगह जगह घूमे और साथ साथ उन भक्तों के भी लिए गए जिन्होंने अपने सतगुरु से रमे राम को जाना, ईश्वर को जाना, अल्लाह को जाना, गॉड को जाना, उनके भी साथ साथ नाम हम लेते चले जा रहे हैं। नाम चाहे हम लेते चले जाएं, बरसों बरस ले भी रहे हैं, नाम से काम नहीं बनता। काम तभी बनता है कि जो हम नाम ले रहे हैं वो काम करना है। जैसे रोज ही पढ़ते हैं, कोई ऐसा सज्जन लोड़ लो जो हर से देह मिलाए जियो। ये केवल पढ़ना नहीं, ऐसे सज्जन की तलाश करनी है कि जो हमें इस प्रभु निराकार के साथ मिलाते हैं। और भी पढ़ते हैं कि तुलसी संसार में सबसे मिलिए धाये, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। ये केवल पढ़ने तक नहीं, हम पढ़ते चले गए तो काम कौन करेगा, ये बात कौन मानकर कौन ऐसे सज्जन मित्र की तलाश करेगा, ऐसे रहबर की तलाश करेगा। वो सत्संग हमने ही करनी है और निशानी भी बताई गई है कि जो हमें परमात्मा के साथ जोड़ दे, दीदार करा दे। जो सत्संग जैसे पढ़ते हैं, गावे को जापे दिससे दूर, तो गावे को देखे हाजरा हाजूर। कहते हैं कि कोई दूर समझकर जाप कर रहा है, आराधना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, कोई हाजर हजूर समझकर, जिन्होंने सत्संगत जाना, जिनके हम नाम लेते हैं, बेबे रानकी जी का ले लेते हैं, राय बुलार का लेते हैं, सदने का ले लेते हैं, सैन नाई का ले लेते हैं, राजे जनक का ले लेते हैं, हनुमान का, कबीर साहब का, हम सात संगत मीरा का भी नाम लेते हैं, अनेकों नाम लेते चले जाते हैं। पर उन्होंने तो अपने सतगुरु से दीक्षा ली, ये सत्संगत जानकारी ली, बाबा नानक जी से राय बुलार ने, बेबे नानकी ने ली। जो इतिहास के वाकब हैं वो जानते हैं, जो रोज़ पढ़ने वाले हैं जानते हैं। पिता कालू तो चपेड़े ही लगाता रहा जब उन्होंने सच का सौदा किया। सच का सौदा क्या के सच को जाना कि ये प्रभु परमात्मा केवल सच है और जो कुछ भी ये दुनिया देखते हैं ये झूठ है, ये सत नहीं है। ये दुनिया तो कभी बनी कभी ख़त्म हुई, ये दुनिया तो इसी तरह ही चलती रही। पर जब दुनिया है तब भी है, जब दुनिया नहीं रहे तब भी रहने वाली वस्तु, इसी को केवल भगवान परमात्मा ईश्वर निराकार कहते हैं। इसकी जानकारी जब पूर्ण सतगुरु से मिलती है, जाने वाले से जाना जाता है। कोई भी दुनिया में काम है, छोटा है बड़ा है, जो जानता होता है वही हमें जनाता है, वही बताता है, वही सिखाता है। जो आप ही नहीं जानता उसने हमें क्या सिखाना है, उसने हमें क्या शिक्षा देनी है। जब पढ़ा हो टीचर हो उसी के पास बच्चे भेजते हैं कि हमारे बच्चों को पढ़ा कर लायक बना देगा। जो आप ही अनपढ़ है वो बच्चों को क्या पढ़ाएगा। इसी तरह ही जैसे कोई जा रहा हो आगे कुआं हो, जिसकी आंखें हो वो तो जो भी उसके पीछे चल रहे हैं सबको बचा लेगा, कहेगा रुक जाओ आगे कुआं है। जिसकी आंखें नहीं होती, चाहे पीछे आंखों वाले भी क्यों ना हो, वो सत्संग आप भी कुएं में गिरता है। और जो उसके पीछे भाई मैंने इसके पीछे चलना है, अपना नहीं सोचना कि आगे कुआं है, दातार ने आंखें दी हैं मैं बच जाऊं। उसके बारे कहा है कि आप मोयो बामना सब साथ वाले, कहते आप भी कुएं में गिरा और को दूसरों को भी गिर कर ले गया, आप भी बुड़ गया और दूसरों को भी बुड़ा दिया। तो आओ सात संगत, संत महात्मा जब जब भी जिस युग में भी आए, द्वापर में आए, त्रेता में आए, सतयुग में आए, कलयुग में आए, उन्होंने यही आवाज़ दी। जैसे बाबा नानक ने जगह जगह जाकर कहा कि मैं गरीब का कोई सौदा ले लो, वो सच का सौदा जो तेरा तेरा ही कहते रहे। वो तेरा धारण नहीं थी कि जो वस्तु वजन कर रहे थे तराजू पे उसको तेरा बोल दिया, उसको बोलते आगे 14 भी कह देते, 15 भी कह देते, 16 भी कह देते। वो तेरा तेरा ये कहते रहे कि उनको ज्ञान हो गया कि ये सब कुछ इस दातार का है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपिया क्या लागे मेरा, कि दातार ये सब कुछ तेरा है, मेरा कुछ नहीं है। ये शरीर भी तेरी देन है, ये पाँव हाथ भी तेरे देन है। कभी कभी इंसान इसी पे ही अपने आप को कोसता रहता है। किसी के पास जूता नहीं था, वो यही भगवान को कोसता चला जाए, मुझे जूता ही नहीं दिया इसने। और दूसरा जो भाने के अंदर रहने वाला शुक्रगुजार, वो कहता है दातार तूने जूता नहीं दिया, पाँव तो दिए हैं, मैं चल तो सकता हूँ। वो भी है जिनके पाँव नहीं हैं वो चल नहीं सकते। किसी को प्यास होती है, आधा गिलास उसके हाथ में थमा दो तो वो देखो क्या उसकी हालत होती है। मुझे आधा गिलास मिला है, भरा हुआ नहीं मिला। और किसी को आधा भी मिल जाता है जो भाने के अंदर रहने वाले हैं, कहते हैं दातार तूने आधा गिलास तो दे दिया। जो मेरे मुंह में ऐसे खुशक हो रहा था मेरा मुंह, वो कुछ तो उसको राहत मिली। मैंने दो चार घूंट भी पानी के ले लिए, ये भी दातार तेरा शुक्र है। किसी कवि ने शायर ने कहा कि तूने दिया है सब कुछ पर सब्र शुक्र नहीं है। किसी के पास सब कुछ होते हुए फिर भी रोता रहता है, मेरे पास कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं। जिसके पास नहीं है वो तो रोएगा, वो तो सही रोता है। जिसके पास सब कुछ होते हुए भी फिर भी सत्संग तो जहाँ बैठेगा अपना रोना ही सुनाएगा। तो आओ सत्संग संत महात्मा जहाँ ये ज्ञान प्रदान करते हैं, साथ साथ हमें जीने का भी ढंग सिखाते हैं कि इंसान दुनिया में कैसे जीता है, इंसान का बैठना उठना कैसे होता है, इंसान का बोल कैसे होता है। नहीं तो सात संगत वो तो पढ़ते ही हैं कि पशु पलेटे मानस चाम, करतूत पशु की मानस जात। ये तो सत्संग हम पढ़ते हैं। जब कर्म सामने आते हैं तो सत्संगत उसे पता चलता है कि ये पशुओं वाले कर्म हैं। कर्म ही सामने आते हैं तो इंसानों वाले भी सामने आ जाते हैं। आप जानते हैं कि हम जितने भी इस संसार पे ये हम इंसानी जामे में आए, ये 87 लाख जूनियों से भ्रमण करते करते आए, इंसान से इंसान नहीं बनते चले आए। क्योंकि जब हम इंसान की हरकत देखते हैं, उसकी ढील ढोल देखते हैं, चाल देखते हैं, तो कहते हैं जब कोई बच्चा ही हमारा भागता आता है तो हम कहते हैं आराम से चल, क्या घोड़े की तरह भाग रहा है। वो अंश है हमारे अंदर। और साथ संगत जिसको किसी को कितनी बातें कहते चले जाओ, कहते चले जाओ, आगे से उत्तर नहीं मिलता तो हम कहते हैं ये तो निरीह गाय की गाय है, इसको क्या कहना है। अगर कोई बातें बहुत करता है, चुप नहीं करता, तो कहते हैं क्या तोते की तरह रट लगाए बैठा है, आराम से बात कर। इसी तरह कोई किसी टाइम कौन सी बात करता है, किसी टाइम कौन सी करता है, आपने उस माइंड को बदल देता है तो कहते हैं ये तो गिरगट की तरह रंग बदल रहा है, एक बात पे तो रुकता ही नहीं है। इसी तरह ही साध संगत अगर कोई कड़वे से शब्द किसी को बोल देते हैं, कहते हैं बिच्छू की तरह डंक लगा दिया तूने। कोई साध संगत ऐसे, जितनी भी साध संगत मैं गिनती चली जाऊं, क्योंकि वो तो एक जैसे ही होते हैं, जैसे कहा कि निंद्रा भोजन भोग पै ए पस पुरख समान, ज्ञान अधिक किनरन ते ज्ञान बिना पशु जान। कहा कि निंद्रा कर लेनी, भोजन कर लेना, काम कर लेना, बच्चे पैदा कर लेने, घर बना लेना, कहा ये इंसान तेरे और पशु में एक जैसे हैं। आप देखते हैं छोटी सी चिड़िया एक एक तिनका उठा कर कितने अच्छा घोंसला बनाती है कि देख कर दंग रह जाते हैं कि शायद इंसान भी ऐसा ना बना सके। और वो भी अपना पेट भर लेती हैं, बच्चों का भी भर लेते हैं, रहने के लिए भी घोंसला बना लेती हैं। तो आओ सत्संग देखा जाए तो तेरा तो इंसान में क्या फर्क रहा, पशु में, उसमें तो फिर भी सत्संग भलाई बताई कि पशु मिले चंगियाइयाँ, खड़ खावन अमृत देन, ना भी होने आदमी तिरिक जीवन कर्म करें। कहा कि पशु भूसा खाकर, खल खाकर तो अमृत जैसा दूध देती हैं, तू इंसान छत्ती पदार्थ खाकर, इतने फल फ्रूट खा कर तू क्या दुनिया को देन दे रहा है। उसका तो गोबर भी जलाया भी जाता है, हम अपना खाना बना लेते हैं। हम सब गांव से आए हैं, गांव भली प्रकार जानते हैं कि गोबर को सुखा कर हम कैसे खाना बनाते हैं। इसी तरह चमड़ा भी काम आ जाता है, जूते बनते हैं, और भी कई चीज़ें बन जाते हैं। उनका जो गोश्त होता है वो भी कई पशु परिंदे और छोटे मोटे खाकर अपना पेट भर लेते हैं, हड्डियां भी काम आ जाती हैं। इंसान तू बता, उसका तो गोबर भी बहने चौके के ऊपर देते हैं रसोई घर में, उसको भी पवित्र माना जाता है। इंसान तू बता तेरा क्या काम आता है, क्या तेरा चमड़ा काम आ जाता है, क्या तेरा विष्ठा जहाँ भी पड़ा हो मुंह ढक कर गुजरना पड़ता है, क्या काम तेरा आता है, तू किस पे मान करता है। अगर तू मान करना है अपने ऊपर नहीं करना, कहा कि मान करूं तू दो परे मेरे प्रीतम प्यारे, अपने प्रीतम अपने गुरु के ऊपर मान करना है कि जिसने हमें जन्मों जन्मों से भटके हुए थे इस प्रभु से जोड़ दिया, परमात्मा से जोड़ दिया। जो जुड़ जाता है कहता बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लिखे, कि मैं जन्मों जन्मों से बिछड़ा हुआ था, पर बाकी का जन्म जो है ये तेरे लिखे है। तो आओ सत्संग, केवल ये इतने अमोलक वचन केवल ये पढ़ने तक नहीं है, पर ये जब पढ़ते हैं वो काम नहीं करते, ये और छूट देते चले जाते हैं। सत्संग जैसे कहा कि चलती चक्की देख के प्यो कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबत बच्चा ना कोए। कहते हैं चलती चक्की होती है तो उसमें सत्संग जितने भी दाने हम डालते जाते हैं पिस जाते हैं, साबत नहीं बचते। कबीर साहब ने कहा, बाबा नानक ने कहा कि दो पुड़ चक्की जोड़ के पीसन आए बैठ, जो दर रहे सो बरे नानक जब डिठ। दर कहते हैं जैसे उसमें एक किल्ली लकड़ी की लगी होती है दो पुड़ों के बीच में, कहते हैं जो उसके साथ लग जाते हैं वो बच जाते हैं दाने, वो साबत होते हैं। बहने गांव में चक्की पीसते हैं, बचपन में नानी दादी के पास जाते थे गांव में, जब वो आटा पीसती थी तो जब वो निकालते थे पूड़े एक उठाते थे तो किल्ली के साथ दाने लगे होते थे। कहा कि और तो पिस गए, ये क्यों बच गए? कहने लगे ये किल्ली के साथ लग गए। इसी तरह जो पूर्ण सतगुरु पूर्ण महात्मा के साथ लगे रहते हैं, साथ संगत के साथ जुड़े रहते हैं, वो साथ संगत कितने भी दुनिया में अपद्धर हों वो बच जाते हैं, क्योंकि वो किसी के और का आसरा नहीं लेते, वो केवल इस प्रभु दातार का जो देने वाला है। जैसे कहा है कि देंदा दे लेंदा थक पाए, देने वाला तो नहीं थकता, हम लेने वाले थक जाते हैं। सत्संग है तो ऐसी बात हंसे की, पर सत्संग वो मुझे याद है कि एक बहन रोज आया करे, माता जी 10 वर्ष हो गए शादी हुए बच्चा नहीं हुआ, आप आशीर्वाद दो, बाबा जी से आशीर्वाद ले दो बच्चा हो। ऐसे ही सत्संग कुछ समय गुजरा तो बच्चा हुआ, बड़ी खुशी मनाई गई, और समय गुजरा एक और हो गया, 2, 4, 5, 6, 7, 8 बच्चे हो गए। तो फिर आकर कहने लगी माता जी बस बख्श लो, अभी कहीं और ट्रांसफर कर दो। तो आओ सत्संग, इससे पता चलता है कि देने वाला नहीं थकता, हम लेने वाले थक जाते हैं। तो आओ सत्संग, ये जितनी भी बातें हैं कोई बनावटी नहीं, मैं आपके सामने रख रही, जो ज़िंदगी में साथ संगत ये बातें आई हैं वही आपके सामने उनका ही जिक्र कर रही हूँ। तो आओ साथ संगत, बड़े भागों से ऐसे महात्मा मिलते हैं, बड़े भाग से मानस तन भी मिलता है, बड़े भाग मानस तन पाया, बड़े भागों से ये मानस तन मिलता है। ये नहीं कि हम मानस्थान से निकले तो फिर ही मानस्थान मिलेगा, पता नहीं ये किस जूनी में चला जाएगा। तन तैयार है आगे, चाहे कुत्ते का हो, चाहे गद्दे का हो, चाहे चींटी का हो, चाहे मच्छर का हो, चाहे हाथी का हो, चाहे सांप का हो, चाहे बिच्छू का हो। सत्संग कितने तो जिया चंद पानी में हैं गिन नहीं सकते, कितने ही ज़मीन पर पशु चल रहे हैं, कितने आसमान पे परिंदे उड़ रहे हैं। ये सांसें हमने तो केवल 84 भी नहीं देखियाँ होगी जूनियाँ, ये 84 लाख जूनियों का वर्णन किया गया। तो ये इतना लंबा सफ़र है कि जैसे कहा है कि मर मर जमे जमे फुन मरे, बहुत सजा प्या देस लमे। कहते हैं ये बड़ी लंबी सजा है। फिर आगे कहा है कि एक जगह कि कादर करीम ना जान्यो, जान्यो जान्यो मैंने जानना, कादर करीम ना जान्यो करता तो तिल पीड़े जो कानिया। कहा कि कादर करीम को नहीं जाना तो याद रख ऐसे पीसा जाएगा कि जैसे कोल्लू में तिल पीड़े जाते हैं। तो आओ सत्संग, ऐसी बातें उनको क्यों कहनी पड़ी, क्योंकि हम पढ़ते सुनते हुए भी अपनी चाल को उसी तरह ही चले जाते हैं। वो कहते हैं कि ना कोई वैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बनाई। हम वैर भी करते हैं, बेगाना भी समझ लेते हैं, कौन सी बात हम मान रहे हैं। वो ये भी कहते हैं कि कालिया नाल बिगाड़िया, तोलिया नाल सवार, मत शर्मिंदा थी साईं दे दरबार। कहा कि चलो तेरे बाल काले थे सिर पे, तूने नहीं सुनी, नहीं मानी, अभी तो तेरे बाल सफ़ेद हो गए, अभी तू मान ले। इसके बारे इंसान की 10 अवस्थाएं बताई। पहली अवस्था का जिक्र किया कि पहले प्यार लगा था दूध, बच्चा पैदा होता है उसको दूध के बगैर और कुछ नहीं अच्छा लगता। पहले प्यार लगा था दूध, दूजे माए बाप की सुध, फिर उसको माँ बाप की सोझी मिल जाती, ये मेरे माँ है, ये मेरा बाप। तीसरी अवस्था आती है तीसरे भैया भाभी देव, चौथी आती है प्यार ऊपर निखेड। कहते हैं कि फिर पता चल जाता है ये मेरी बहन है, ये मेरा भैया है। और फिर चौथी जब अवस्था, उसको खेलने का भूख का भी नहीं पता होता, खिलौने रख तो खेलता चला जाएगा। पंजवीं खान पीन की चाट, फिर उसको समझ आ जाती है मैं ये भी खाऊं वो भी खाऊं। तो सत्संग जब छवीं अवस्था आती है, छेवन कामन पूछे जात, कहता हूँ मेरी शादी होनी चाहिए। सतवें सांझ किया कारवास, फिर कहते हैं सब सामान फिर इकट्ठा करता है, मैं ये भी मेरे घर में होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, जो भी नया देखेगा वस्तु वही कहेगा ये भी मैं घर लाऊं। फिर आगे क्या हो जाता, आठवीं जब अवस्था आती है, आठवीं क्रोध हुआ तन नाश। कहते हैं कि फिर क्रोध चढ़ना शुरू हो जाता है, हंगता आ जाती है, हंगता के बगैर क्रोध नहीं आता, हंगता आ जाती है, मेरे पास ये है। फिर कोई उस चीज वस्तु को हाथ लगाए, तू हाथ क्यों लगाई, बच्चों को गुस्सा, बीवी को गुस्सा, और कोई आए उसको गुस्सा। अठवें क्रोध प्या तन नाश, अपने तन को नाश कर लेता है। कहते हैं ना काम क्रोध काया को जाले, ज्यों कंचन सुहागा डाले। फिर सासन अपने आप को ही कोसता रहता है, ना में तोले उबे सा, नई अवस्था आई तो वाल सफ़ेद हो गए, सांस फूलना शुरू हो गया। नावें धोले उबे सा, दद्दा दसवां हुआ स्वा, दसवें अवस्था आई तो ख़त्म वो कहानी, जैसे बचपन से चली दसवीं अवस्था में ख़त्म हो गई। दद्दा दसवां हुआ स्वा, गे संगीत पुकारे धा, आया गया मोया नाव, कावन पुछे काम पुछे सद्यो काओ, नानक मुख नानक मुख मन मुख अंध प्यार, बाज गुरु डुबा संसार। कहा कि जो कुछ भी तू करता रहा तेरे किसे काम आने वाले नहीं, गुरु के बगैर संसार डूब गया। एक ना पुल्ला दो ना पुल्ले, पुल्ला जग सवाया, सारा संसार भूल बैठा। सत्संग जब भूल बैठता है तो तभी सत्संग ऐसी बातें होती हैं जो दूसरे को भी हानिकारक होती हैं, अपने आप को भी हानि पहुंचाती हैं। अगर कोई ऐसा शब्द किसी को बोल देते हैं जो हमें बोल देता है, हम घर बैठे हुए ही सत्संग उस बात में सोच में पड़े रहते हैं, नींद गवा लेते हैं, भूख गवा लेते हैं, उसने मुझे ये बात कही क्यों, वो भी मिलेगा मैं भी काम नहीं, उसने एक कही मैं दो चार सुनाऊँगा, वो मिलेगा पता नहीं हफ्ते बाद मिलता है, महीने बाद मिलता है, बरस बाद मिलता है, इतनी देर में तो तू अपनी नींद भी गवा ली, भूख भी गवा ली। तो सत्संग इसीलिए कहा कि ऐसी बाणी बोलिए, मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप भी शीतल होए। कहते हैं कि ऐसी वाणी आवाज़ को कहते हैं, बोल को कहते हैं, कि ऐसी आपकी बोली हो मीठी जो और को भी शीतल करे और आप भी शीतल रहे। तो सात संगत तभी कहा कि मिठ बोलड़ा जी, हर सज्जन स्वामी मोरा, हो संभल थकी जी, शो कदे न बोले कोड़ा। ये सास स्वामी जो सतगुरु है वो मीठा बोलेगा तो हमें भी मीठी बोली सिखाएगा, अगर वो आप ही कुड़त्तन उगल रहा है तो हमें क्या मिठास देगा। तो आओ सात संगत, इसीलिए महात्मा ये जुगो जुग पढ़ते आए कि मैं दो दो लोचन देखा हूँ हर बिन आवरण देखा, नैन रहे रंग लाई या बेगल कैन न जाई, जाको गुरमुख गुरु के मुख द्वारा, जाको गुरमुख आप बुझाई ताके हृदय रिया समाई। जिसको गुरु समझ दे देता है, बुझा देता है, बता देता है, उसके हृदय में इसका प्रवेश हो जाता है। जब हो जाता है फिर ये आत्मा बोल उठती है कि मैं ना मरूं, मर बो संसारा अब मोई मिलो जीवा ननारा। तो आओ सात संगत, जैसे अभी आपने 15 अगस्त का भी नाम सुना, ये इतिहास से जुड़ा हुआ नाम, जब ये बंटवारा हुआ पाकिस्तान हिंदुस्तान का, तो सात संगत ये उसी नाम पे ही चल रहा है। इसी दिन ही जगत माता जी और शहनशाह जी का भी ये सात संगत नाशवान शरीर को छोड़ने का भी वही दिन। तो आओ सात संगत, आज़ादी तो बेशक हो गई देश की आज़ादी, पर एक शायर ने कहा कि की होया जे देश आज़ाद होया, जे का रूह नहीं हुई आज़ाद साड़ी। वो रूह तो हमारी आत्मा तो आवागमन के चक्कर में पड़ी हुई है, क्या हो गया जे देश आज़ाद हुआ। पर जैसे देश आज़ाद हुआ इंसान का दिल छोटा हो गया, देश तो आज़ाद हो गया पर इसने दिल नहीं बड़ा किया, इसके अंदर वैर भी बढ़ गया, नफरत भी बढ़ गई, ईर्ष्या भी बढ़ गई, मार काट भी बढ़ गई, चपटा छीनी भी बढ़ गई, सब कुछ बढ़ गया। वैसे कह दिया देश आज़ाद हो गया। तो आओ सात संगत, समा भी अभी काफ़ी आगे बढ़ चुका है, यही अरदास प्रार्थना करें कि दातार कृपा करना, संतों का संग दे रखना। आप जानते हैं कि संग तारे तो संग डूबे, अच्छी संगत मिलती है तो इंसान बच्चे भी देखते हैं, जब युवावस्था में आते हैं अच्छी संगत मिलती है तो अच्छे बच्चे बन जाते हैं, अगर शराबी की मिल जाए तो शराबी बन जाते हैं, जुआ खेलने वाले की मिल जाए तो जुआ खेलने वाले बन जाते हैं, अगर बचपन से ही संतों की संगति मिलेगी तो अवश्य संत बनेंगे। तो आओ सात संगत, बच्चों को भी इसी तरह आदत डालें सत्संग की, ये भी कुल चलती है, जैसे घर में बेटा होता है हम कहते हैं हमारी कुल चल रही है, तो सत्संग इसी तरह ये भी कुल चलती है। हम ज्ञानवान हैं, हमारे माता पिता ज्ञानवान थे, आगे हम हो गए, कुल चल रही, हमारे बच्चे आगे ज्ञानवान सत्संगत में आने वाले हो गए, हमारी कुल चल गई, आगे उनके बच्चे आएंगे, इसी तरह ये पीढ़ी पीढ़ी चलती रहती है। तो आओ सत्संगत, यही अरदास प्रार्थना करें कि दातार कृपा करना, संतों का संग दे रखना ताकि ये बुद्धि स्वच्छ रहे। सत्संग जी।